एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
जी,
ज्ञान गोष्ठी में आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसी किताब और ऐसे कुछ विचारों पर बात करने जा रहे हैं जो वाकई सोचने पर मजबूर करते हैं, खासकर अगर हम आज के समय को देखें तो।
हाँ बिल्कुल, आज हमारी चर्चा का विषय है हेल ड्रेपर के निबंधों का एक संग्रह जिसका नाम है सोशलिज्म फ्रॉम बिलो। हिंदी में कहें तो नीचे से समाजवाद।
ये नाम ही अपने आप में काफी कुछ कह देता है ना,
समाजवाद।
हाँ, पर नीचे से।
सही कहा, और यही आज हमारी बातचीत का फोकस रहेगा। ये किताब दरअसल समाजवाद की दो, आप कह सकती हैं, बुनियादी तौर पर बिल्कुल अलग अलग धाराओं की छानबीन करती है। एक वो जो ऊपर से थोपा जाता है और दूसरा वो जो लोगों के अपने संघर्षों से जमीन से उपजता है। और देखिए, ये आज इतना जरूरी क्यों हो जाता है, क्योंकि हमने देखा है 20वीं सदी में समाजवाद के नाम पर जो भी प्रयोग हुए उनमें से खैर कई तो या तो असफल रहे या फिर तानाशाही बन गए। तो सवाल उठता है, क्या समाजवाद का मतलब हमेशा यही होता है, हमेशा सत्ता का केंद्रीकरण, या फिर क्या कोई और रास्ता भी है? ड्रेपर हमें उसी दूसरे रास्ते के बारे में सोचने पर मजबूर करते हैं, एक ऐसा रास्ता जो लोकतंत्र पर टिका हो, आम लोगों की भागीदारी पर।
तो चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं और पहले इस दिलचस्प विचारक हेल ड्रेपर से थोड़ा और जान पहचान करते हैं। ये 1914 से 1990 तक रहे, अमेरिका के एक समाजवादी विचारक तो थे ही, साथ में एक्टिविस्ट भी थे और गहरे विद्वान भी। मतलब सिर्फ लाइब्रेरी में बैठने वाले नहीं बल्कि आंदोलनों में भी सक्रिय।
हाँ, और यही चीज उनके लेखन को एक अलग तरह की धार देती है। मेरे ख्याल से वो स्वतंत्र समाजवादी या जिसे थर्ड कैंप कहते हैं उसके समर्थक थे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि वो न तो पश्चिमी पूंजीवाद के फैन थे और न ही सोवियत संघ जैसे तानाशाही समाजवादी राज्यों के। वो दोनों से अलग एक आजाद रास्ता खोज रहे थे।
दिलचस्प, यानी किसी एक खेमे में बंधे नहीं थे, एक स्वतंत्र सोच।
बिल्कुल, उनमें थ्योरी की समझ और जमीनी राजनीति का, आप कह सकते हैं, गजब का मेल था। वो कार्ल मार्क्स के विचारों के बहुत गहरे जानकार थे। उनकी एक किताब है कार्ल मार्क्स थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन, वो काफी जानी मानी है। वो मार्क्स को सिर्फ एक सिद्धांतकार की तरह नहीं देखते थे बल्कि एक क्रांतिकारी कार्यकर्ता के तौर पर समझते थे।
और उनकी एक और बहुत जरूरी किताब है, या शायद निबंध कहना ज्यादा ठीक होगा, द टू सोल्स ऑफ सोशलिज्म, यानी समाजवाद की दो आत्माएं। ये 1966 में आया था। हमारी आज की जो ये चर्चा है उसका आधार काफी हद तक यही है। उनका जो अकादमिक ज्ञान था और जो एक्टिविस्ट के तौर पर उनका तजुर्बा था, उसी के मेल ने उन्हें इस विषय पर लिखने के लिए इतना काबिल बनाया। वो सिर्फ हवा में बात नहीं कर रहे थे, उन्होंने इन चीजों को असल दुनिया में देखा था।
बिल्कुल, अब आते हैं इस किताब नीचे से समाजवाद पर। जैसा हमने कहा, ये ड्रेपर के कई जरूरी निबंधों का कलेक्शन है, तो इसका मुख्य मकसद क्या है? देखिए, इसका मकसद है समाजवाद के विचार को उन तानाशाही और नौकरशाही विकृतियों से आजाद कराना जिन्होंने 20वीं सदी में इसे काफी काफी बदनाम किया, नुकसान पहुंचाया।
तो किताब का जो मूल तर्क है वो क्या है? ड्रेपर एक बहुत ही फंडामेंटल, एक तीखा बंटवारा करते हैं। वो कहते हैं कि समाजवाद की कहानी में शुरू से ही दो अलग अलग बल्कि एक दूसरे के विरोधी धाराएं, या कह लीजिए आत्माएं मौजूद रही हैं।
पहली है ऊपर से समाजवाद, सोशलिज्म फ्रॉम अबव। ये वो सोच है जिसके हिसाब से समाजवाद कुछ चुने हुए समझदार लोगों या राज्य या किसी क्रांतिकारी पार्टी, उनके द्वारा आम जनता को दिया जाना चाहिए। ये कहीं ना कहीं मानती है कि जनता खुद उतनी सक्षम नहीं है, उसे गाइडेंस की जरूरत है। इसलिए ये स्वभाव से ही थोड़ी एलिटिस्ट और अक्सर सत्तावादी हो जाती है।
अच्छा, और इसके ठीक उलट दूसरी आत्मा?
हाँ, इसके ठीक उलट है नीचे से समाजवाद, सोशलिज्म फ्रॉम बिलो। ये आम लोगों के संघर्ष का समाजवाद है, उनकी खुद की पहलकदमी, उनकी आत्ममुक्ति का समाजवाद। इसकी जड़ें कहाँ हैं? मार्क्स के उस मूल सिद्धांत में कि मजदूर वर्ग की मुक्ति स्वयं मजदूर वर्ग का ही काम होना चाहिए। यह कोई ऊपर से टपका हुआ तोहफा नहीं है बल्कि जमीन से, लोगों के बीच से उपजी हुई चीज है।
ये तो बहुत बड़ा फर्क है। तो मतलब ड्रेपर का लक्ष्य सिर्फ ये बताना नहीं है कि समाजवाद क्या है?
बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। उनका सवाल इससे कहीं ज्यादा गहरा है। हम ऐसा समाजवाद कैसे हासिल कर सकते हैं जो इंसानी आजादी को कम ना करे बल्कि उसे और बढ़ाए? वो समाजवाद के उस लोकतांत्रिक और क्रांतिकारी चरित्र को जो कहीं खो गया था उसे फिर से जीवित करना चाहते हैं। वो दिखाना चाहते हैं कि असली समाजवाद का मतलब है ज्यादा लोकतंत्र, ज्यादा भागीदारी, कम नहीं।
तो इस किताब में फिर हम किन मुख्य थीम्स पर क्या क्या बातें मिलेंगी हमें?
देखिए, इसमें लोकतंत्र और समाजवाद के रिश्ते की गहरी पड़ताल है। ये जो आत्ममुक्ति का सिद्धांत है, इसका असल मतलब क्या है? राज्य की भूमिका क्या होती है? मजदूर वर्ग कैसे अपनी चेतना और संगठन बनाता है? और सबसे जरूरी, जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक समाजवादी आंदोलन कैसे खड़े किए जा सकते हैं? इन सब पर ड्रिपर ने काफी विस्तार से लिखा है।
चलिए अब इन विचारों में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। शुरुआत करते हैं ड्रेपर के सबसे मशहूर आइडिया से, समाजवाद की दो आत्माएं। यहीं पर वो अपना पूरा फ्रेमवर्क खड़ा करते हैं। ये जो ऊपर से समाजवाद है, ये दिखता कैसा है? इसके क्या क्या रूप हो सकते हैं?
हाँ, ड्रेपर इसके कई ऐतिहासिक उदाहरण देते हैं। वो करीब 6 तरह के ऊपर से समाजवाद की पहचान करते हैं। अब सबको एक एक करके विस्तार से बताना तो शायद मुश्किल होगा यहाँ, लेकिन कुछ खास उदाहरणों से बात एकदम साफ हो जाएगी। जैसे एक है परोपकारी अभिजात्यवाद, फिलंथ्रोपिक एलिटिज्म। आप सोचिए, कुछ अमीर और नेक दिल सुधारक जैसे रॉबर्ट ओवन, वो सोचते थे कि वो अपनी समझदारी और अपने पैसे से मजदूरों के लिए एक बेहतर दुनिया बना देंगे, और मजदूरों को बस उसे चुपचाप स्वीकार कर लेना है। मतलब करता वो है, जनता नहीं।
अच्छा।
फिर दूसरा रूप है राज्य समाजवाद, स्टेट सोशलिज्म। जैसे जर्मनी में फर्डिनेंड लसाल का मानना था कि जो मौजूदा ताकतवर राज्य है उसी का इस्तेमाल करके समाजवाद लाया जा सकता है, यानी राज्य ही सब कुछ करेगा, जनता की सीधी भूमिका नहीं। और फिर इसका सबसे चरम और बिगड़ा हुआ रूप, जिसे ड्रेपर स्टालिनवाद या कम्युनिज्म कहते हैं, जहां एक पार्टी और राज्य ने समाजवाद के नाम पर पूरी तरह तानाशाही थोप दी और हर तरह की असहमति, हर तरह के लोकतंत्र को कुचल दिया।
यानी मतलब इन सभी अलग अलग रूपों में एक बात कॉमन है, बदलाव ऊपर से आएगा, स्रोत ऊपर है, जनता के हाथ में कुछ खास नहीं, बस तरीका अलग अलग है। कोई प्यार से देना चाहता है, कोई राज्य की ताकत से, कोई पार्टी की डिक्टेटरशिप से।
एकदम सही पकड़ा। इन सब में एक बुनियादी अविश्वास छिपा है आम लोगों की क्षमता पर। अब इसके ठीक उलट ड्रीपर बात करते हैं दूसरी आत्मा की, नीचे से समाजवाद की।
हाँ, ये धारा कहाँ से आती है, इसका स्रोत क्या है?
ड्रीपर कहते हैं कि ये धारा हमेशा से मौजूद रही है छिटपुट रूप में, लेकिन ये कार्ल मार्क्स के साथ मुरी तरह क्रिस्टलाइज होती है, ताकतवर बनती है। इसका मूल मंत्र वही है जो हमने पहले भी कहा, मजदूर वर्ग की मुक्ति स्वयं मजदूर वर्ग का कार्य होना चाहिए। और ये सिर्फ एक नैतिक नारा नहीं है, ड्रिपर जोर देते हैं कि ये एक रणनीतिक जरूरत है। लोगों को खुद अपने लिए लड़ना होगा, खुद शासन करना सीखना होगा, कोई दूसरा उनके लिए नहीं कर सकता। और ये जो संघर्ष की प्रक्रिया है ना, वही उन्हें इसके लिए तैयार करती है।
तो ये सिर्फ मंजिल की बात नहीं है, बल्कि मंजिल तक पहुंचने के रास्ते की भी बात है।
बिल्कुल।
कि रास्ता कैसा हो।
बिल्कुल, साधन और साध्य वो जुड़े हुए हैं। अगर मंजिल एक लोकतांत्रिक और आजाद समाज है, तो रास्ता भी लोकतांत्रिक और आजादी का ही होना चाहिए। इस परंपरा को बाद में रोजा लक्जमबर्ग और अमेरिका में यूजीन डेव्स जैसे लोगों ने आगे बढ़ाया। उन्होंने जनता की सीधी कार्रवाई और मजदूरों के अपने लोकतांत्रिक संगठनों पर बहुत बहुत जोर दिया।
ड्रेपर मार्क्स के बारे में कुछ और भी दिलचस्प बातें बताते हैं ना, खासतौर पर ये आत्म मुक्ति के सिद्धांत को लेकर।
हाँ हाँ, बिल्कुल। ड्रेपर बहुत बारीकी से दिखाते हैं कि ये जो सेल्फ इमेंसिपेशन यानी आत्म मुक्ति का विचार है, ये मार्क्स के लिए कोई साइड इशू नहीं था। ये उनके पूरे राजनीतिक प्रोजेक्ट का, आप कह सकती हैं, पहला सिद्धांत था।
मार्क्स ने अपने समय में जो दूसरे ऊपर से समाजवाद वाले विचार चल रहे थे, जैसे कोई मसीहा जैसा तानाशाह आएगा और सबको बचा लेगा, या कोई पढ़ी लिखी एलीट पहले जनता को सिखाएगी फिर सत्ता देगी, या कोई एक पार्टी खुद को पूरे मजदूर वर्ग का अकेला प्रतिनिधि मान लेगी, मार्क्स ने इन सब का कड़ा विरोध किया था।
तो मार्क्स का मानना था कि लोग करके सीखते हैं, मतलब संघर्ष के दौरान ही सीखते हैं।
सही, उनके लिए संघर्ष ही सबसे बड़ी पाठशाला थी। और यहीं पर मार्क्स का एक और विचार आता है जो बहुत बहुत ज्यादा विवादास्पद रहा है और जिसे अक्सर गलत समझा गया है, सर्वहरा की तानाशाही, डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरियट। हाँ, ये शब्द सुनते ही तो आज हमारे मन में एक दमनकारी, एक क्रूर शासन की तस्वीर ही उभरती है।
और यही ड्रेपो एक बहुत जरूरी स्पष्टीकरण देते हैं। वो हमें याद दिलाते हैं कि 19वीं सदी में डिक्टेटरशिप शब्द का मतलब हमेशा वो नहीं था जो आज हम समझते हैं। उसका एक मतलब, जो रोमन इतिहास से लिया गया था, किसी एक वर्ग के शासन, रूल ऑफ अ क्लास से था, मतलब किसी एक क्लास का रूल। जरूरी नहीं कि वो हमेशा दमनकारी ही हो।
अच्छा, ये तो बिल्कुल नई बात है मेरे लिए।
हाँ
हाँ,
मार्क्स का तर्क ये था कि पूंजीवादी समाज, चाहे उसमें ऊपर से चुनाव वगैरह होते रहें, असल में क्या है, वो पूंजीपति वर्ग की तानाशाही है, क्योंकि असली आर्थिक और सामाजिक सत्ता तो उसी वर्ग के हाथ में है। तो इसके जवाब में सर्वहारा की तानाशाही का मतलब था बहुसंख्यक यानी मजदूर वर्ग का लोकतांत्रिक शासन। इसका मतलब था कि मजदूर वर्ग राजनीतिक सत्ता अपने हाथ में ले और समाज को अपने हितों और लोकतंत्र के आधार पर दोबारा ऑर्गेनाइज करे।
क्या मार्क्स ने इसका कोई उदाहरण या कोई मॉडल भी दिया था कि ये दिखेगा कैसा कैसा होगा ये शासन?
बिल्कुल, ड्रेपर जोर देकर कहते हैं कि मार्क्स के लिए इसका सबसे ठोस, सबसे जीवंत मॉडल था 1871 का पेरिस कम्यून। वो कुछ हफ्तों का एक क्रांतिकारी प्रयोग था जहां पेरिस के आम लोगों ने, मजदूरों ने सत्ता अपने हाथ में ले ली थी। वहां क्या था, यूनिवर्सल सफरेज, औरतों समेत, जो समय बहुत क्रांतिकारी बात थी। चुने हुए प्रतिनिधियों को किसी भी समय वापस बुलाने का अधिकार था। रेगुलर आर्मी की जगह आम लोगों का सशस्त्रीकरण था और शासन के कामों में सीधी जनभागीदारी थी।
अरे, ये तो आज के हमारे लोकतंत्र की कई धारणाओं से भी ज्यादा रेडिकल लगता है, और ये उस एक पार्टी वाली तानाशाही से तो बिल्कुल ही अलग है जिसे बाद में समाजवादी कहा गया।
बिल्कुल, यही तो ड्रेपर का मुख्य बिंदु है। मार्क्स का आदर्श कोई सेंट्रलाइज्ड दमनकारी राज्य नहीं था, बल्कि सत्ता का विकेंद्रीकरण और ज्यादा से ज्यादा गहरे से गहरा लोकतंत्र था। पेरिस कम्यून एक दलीय राज्य का ठीक उल्टा था। यह दिखाता है कि कैसे बाद में मार्क्स के विचारों को आप कह सकते हैं तोड़ा मरोड़ा गया।
ये नजरिया तो वाकई मार्क्स और समाजवाद की पूरी समझ को हिला देता है। तो अगर हम ड्रेपर के जो मुख्य संदेश है उनको समेटना चाहें तो सबसे अहम बातें क्या निकल कर आती हैं?
मेरे ख्याल में पहला और शायद सबसे जरूरी संदेश है, समाजवाद और लोकतंत्र एक दूसरे से अलग नहीं किए जा सकते, वो अविभाज्य हैं। ड्रेपर के लिए सच्चा समाजवाद सिर्फ लोकतांत्रिक ही हो सकता है, और ये लोकतंत्र सिर्फ वोट डालने तक सीमित नहीं, बल्कि अर्थव्यवस्था में, समाज के हर पहलू में दिखना चाहिए। जहां लोकतंत्र का गला घोटा जाता है, वहां समाजवाद नहीं हो सकता, सीधी सी बात।
हाँ, ये बात तो बहुत साफ तौर पर उभर कर आती है। और दूसरा
है आत्ममुक्ति का केंद्रीय महत्व। स्वतंत्रता कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको कोई दान में देगा, उसे हासिल करना पड़ता है, उसके लिए लड़ना पड़ता है, और ये लड़ाई की प्रक्रिया ही लोगों को इस लायक बनाती है कि वो अपनी स्वतंत्रता को संभाल सकें और अपना शासन खुद चला सकें। मतलब आप जिस तरीके से बदलाव लाते हैं वही तय करता है कि आखिर में बदलाव कैसा होगा। साधन और साध्य जुड़े हैं।
तीसरा शायद हर तरह के अभिजात्यवाद का विरोध है, चाहे वो बुद्धिजीवियों का हो, नेताओं का हो या नौकरशाहों का।
बिल्कुल, ड्रेपर को आम लोगों की समझ, उनकी रचनात्मक क्षमता और उनकी बदलाव लाने की ताकत पर गहरा भरोसा था। वो मानते थे कि लोग अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के रास्ते खुद खोज सकते हैं, उन्हें किसी ऊपर वाले के सहारे की जरूरत नहीं है।
चौथा, मुझे लगता है मार्क्स की सही तस्वीर पेश करना है। ड्रेपर ने कोशिश की कि मार्क्स को उन तानाशाही व्यवस्थाओं से बचाया जाए जिन्होंने उनके नाम का गलत इस्तेमाल किया। उन्होंने दिखाया कि मार्क्स असल में एक रेडिकल डेमोक्रेट थे, इंसानी आजादी के समर्थक थे।
पांचवा, राज्य को निष्पक्ष न मानना। ड्रेपर हमें याद दिलाते हैं कि राज्य कोई न्यूट्रल औजार नहीं है जिसका इस्तेमाल अच्छे या बुरे दोनों कामों के लिए किया जा सके। राज्य का जो ढांचा है वो ही नियंत्रण और व्यवस्था बनाए रखने के लिए बनाए, आम लोगों को सीधे सशक्त करने के लिए नहीं। इसलिए लक्ष्य मौजूदा राज्य पर सिर्फ कब्जा करना नहीं होना चाहिए, बल्कि उसकी जगह जनता की शक्ति पर आधारित नए, ज्यादा लोकतांत्रिक संस्थान बनाना होना चाहिए।
और आखिरी बात, शायद इतिहास से सीखना।
हाँ बिल्कुल, ड्रेपर दिखाते हैं कि विचारों की अपनी एक कहानी होती है, उनका एक इतिहास होता है। समाजवाद की इन दो आत्माओं के बीच जो संघर्ष चला है उसे समझकर हम आज की राजनीति को बेहतर ढंग से परख सकते हैं। हम पहचान सकते हैं कि कौन सी आवाजें ऊपर से आ रही हैं और कौन सी नीचे से, जमीन से उठ रही हैं।
ड्रेपर के लेखन की एक खासियत ये भी है, जैसा आपने कहा, कि उसमें कई ऐसी पंक्तियां हैं जो सीधे असर करती हैं, याद रह जाती हैं। कुछ विचारों को दोहराना जरूरी लगता है।
हाँ, सबसे पहले तो वही मूल मंत्र, मजदूर वर्ग की मुक्ति स्वयं मजदूर वर्ग का कार्य होना चाहिए। ये नीचे से समाजवाद का डीएनए है, कह सकते हैं। बदलाव अंदर से आएगा, अपने एक्शन से।
फिर ऊपर से समाजवाद की वो पहचान, ऊपर से समाजवाद के कई अलग अलग रूपों को जो एकजुट करता है वो यह अवधारणा है कि समाजवाद एक शासक अभिजात वर्ग द्वारा कृतज्ञ जनता को किसी न किसी रूप में सौंपा जाना चाहिए, जो वास्तव में उनके नियंत्रण के अधीन नहीं है।
यहाँ जो मुख्य बात है वो है नियंत्रण का अभाव, जनता के हाथ में लगाम नहीं होती।
और फिर नीचे से समाजवाद का जो सकारात्मक पहलू है।
नीचे से समाजवाद का हृदय ये है कि समाजवाद केवल सक्रिय जनता के आत्म उद्धार के माध्यम से ही साकार हो सकता है, जो अपने हाथों से स्वतंत्रता के लिए पहुंच रहे हैं, अपने भाग्य का नियंत्रण लेने के लिए संघर्ष में नीचे से संगठित हो रहे हैं। इसमें सक्रियता, पहलकदमी और अपनी किस्मत खुद लिखने की बात है, एक्शन पर जोर है।
और मार्क्स की तानाशाही वाली बात का निचोड़, मार्क्स के लिए सर्वहारा की तानाशाही का मतलब था मजदूर वर्ग द्वारा राजनीतिक शक्ति की विजय से ज्यादा या कम कुछ नहीं, एक लोकतांत्रिक गणराज्य में एक मजदूर राज्य की स्थापना।
ये उस डरावने शब्द को उसके सही ऐतिहासिक और लोकतांत्रिक मायने देता है।
अंत में राज्य पर उनकी वो टिप्पणी बहुत महत्वपूर्ण है, राज्य कोई तटस्थ उपकरण नहीं है जिसका उपयोग मुक्ति या उत्पीड़न के लिए समान रूप से किया जा सकता है, ये लोकतंत्र के लिए नहीं बल्कि आदेश और नियंत्रण के लिए संरचित है।
ये हमें एक तरह से आगाह करता है कि सिर्फ सरकारी नीतियां बदल देने से सब ठीक नहीं हो जाता, स्ट्रक्चर को देखना होगा।
ये सब सुनने में बहुत बहुत रेडिकल और इंस्पायरिंग लगता है, लेकिन फिर सवाल उठता है कि आज की दुनिया में, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में इन विचारों का क्या मतलब है, इन्हें कैसे लागू किया जा सकता है, कहाँ देख सकते हैं हम इन्हें?
हाँ, ये सवाल बहुत जरूरी है, क्योंकि सिद्धांत अगर व्यवहार में न उतरे तो उनका क्या फायदा। एक क्षेत्र हो सकता है काम की जगह पर लोकतंत्र, वर्क प्लेस डेमोक्रेसी। सोचिए जैसे मजदूर यूनियने हैं, क्या उनमें फैसले सिर्फ बड़े नेता ही लेते हैं या आम सदस्य ज्यादा सक्रिय हैं, उनकी आवाज सुनी जाती है? या फिर कंपनियां खुद ऐसे मॉडल अपनाएं जहां कर्मचारियों की भागीदारी ज्यादा हो, फैसलों में उनका रोल हो?
और हमारे आस पड़ोस और समुदायों में
कम्युनिटी ऑर्गेनाइजिंग,
हाँ।
वहां कैसे? वहां भी नीचे से पहलकदमी बहुत जरूरी है। किसी बाहरी नेता या एक्सपर्ट पर निर्भर रहने की बजाय लोग खुद मिलकर अपनी समस्याएं पहचाने, उनके हल निकालें, अपने मोहल्ले के लिए योजनाएं बनाएं। जैसे आजकल कुछ शहरों में पार्टिसिपेटरी बजटिंग यानी सहभागी बजट का प्रयोग हो रहा है, जहां नागरिक खुद तय करते हैं कि उनके इलाके का पैसा कहां खर्च होना चाहिए। ये एक छोटा सा उदाहरण है।
राजनीतिक आंदोलनों में भी ये सिद्धांत लागू होता है ना? क्या आंदोलन अंदर से लोकतांत्रिक है? क्या फैसले कुछ गिने चुने नेता ही ले रहे हैं या सबकी भागीदारी से हो रहे हैं? क्या जोर सिर्फ चुनाव जीतने पर है या लोगों को लंबे समय के लिए संगठित करने, उन्हें सशक्त बनाने पर है?
बिल्कुल, किसी भी संगठन, चाहे वो सामाजिक हो या राजनीतिक, उसके काम करने के तरीके, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर में भी ये दिखना चाहिए। क्या लीडरशिप सिर्फ कुछ लोगों के हाथ में है या उसे बांटा गया है? क्या पारदर्शिता है, जवाबदेही है? क्या हर सदस्य को लगता है कि वो अहम है और उसकी बात का वजन है?
और शायद सबसे बुनियादी स्तर पर ये हमें एक तरह की आलोचनात्मक सोच, क्रिटिकल थिंकिंग सिखाता है। हमें सत्ता के हर दावे पर सवाल उठाना सीखना चाहिए, चाहे वो सरकार का दावा हो, किसी कंपनी का या किसी बहुत करिश्माई नेता का। हमेशा ये पूछना चाहिए, इससे किसका फायदा हो रहा है? क्या वाकई ताकत आम लोगों के हाथ में आ रही है या सिर्फ ऐसा दिखाया जा रहा है? ये सवाल पूछना बहुत जरूरी है।
हाँ, ये सिद्धांत हमें हर जगह, हर स्तर पर ज्यादा भागीदारी, ज्यादा पारदर्शिता और ज्यादा लोकतंत्र की मांग करने के लिए उकसाते हैं। ये एक तरह का नजरिया है दुनिया को देखने का।
इस पूरी बातचीत के बाद अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके लिए सबसे अहम सीख या शायद सबसे चौंकाने वाली बात क्या रही, मेरे लिए तो शायद यही कि सर्वहारा की तानाशाही का असल मतलब कितना अलग था जो हम सोचते हैं, और मार्क्स असल में लोकतंत्र को कितना कितना जरूरी मानते थे। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा अच्छा वाला मोमेंट था।
मेरे लिए शायद दो बातें। पहली, वो साधन और साध्य का जो अटूट रिश्ता है। अगर हमें एक आजाद और लोकतांत्रिक समाज बनाना है तो हमारे तरीके भी आजाद और लोकतांत्रिक होने चाहिए। हम दमनकारी तरीकों से आजादी हासिल नहीं कर सकते, ये बहुत गहरी है। और दूसरी बात, ड्रेपर का आम लोगों की क्षमता में वो अटूट विश्वास। आज के जमाने में जब सिनिज्म मतलब निराशावाद इतना ज्यादा है, ये विश्वास रखना कि आम लोग सक्षम है, वो बदलाव ला सकते हैं, ये बहुत जरूरी लगता है।
हाँ, ये वाकई जरूरी है। और हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं जो ड्रेपर के विचारों से ही निकलता है। आज के डिजिटल युग में जब हमारे पास कम्युनिकेशन के, जुड़ने के इतने सारे नए साधन हैं, टेक्नोलॉजी है, तो नीचे से संगठित होने और लोकतंत्र को जमीनी स्तर पर मजबूत करने के क्या नए और रचनात्मक तरीके हो सकते हैं, इस पर जरूर सोचिएगा।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।